दास के आज जो तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर का आज 16वीं श्रृंखला है, 16th पार्ट है ये। पिछली बार हमने चर्चा की कि जो कुछ हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो सच है या झूठ है, एग्जामिन करना बड़ा जरूरी है, परीक्षा करना। और उसको परीक्षा करने के लिए पांच तरह के उपाय बताए गए स्वामी जी ने। देयर आर फाइव वेज ऑफ एग्जामिनेशन। जो कुछ हम मानते हैं, जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम जानते हैं, वो कितना सच है या झूठ है, वो कितना रियल है, कितना अनरियल है, इसको परखने के लिए पांच उपाय बताए। हमेशा ध्यान रखिए, स्वामी जी की एक बड़ी खास बात जो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, स्वामी जी का अपना विचार कहीं कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब भी आप सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर बाद में आकर पूछते हैं कि ये आप मनुस्मृति के श्लोक चर्चा कर रहे हो, आप पतंजलि योग दर्शन की सूत्र चर्चा कर रहे हो, आप न्याय दर्शन की चर्चा, तो स्वामी जी ने क्या किया? आप स्वामी जी के सत्यार्थ प्रकाश क्यों बोल? यही स्वामी जी खास बात है, उन्होंने कोई विचार अपने नहीं बोला। जो भी हमारे प्राचीन शास्त्रों में है, जो वैदिक धर्म का जो 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 उसका असली जो स्वरूप है, जो शास्त्रों में वर्णित है, उन शास्त्रों को उन्होंने सामने रखा कि देखो तुम जिसको मानते हो वो ये है, और ये मेरा नहीं, वो ऋषि का वचन है। इसीलिए वो हमेशा इस बात को दोहराते हैं कि वेद से लेकर जैमिनी ऋषि तक जो विचार है मेरा वही विचार है, उससे कोई अलग विचार नहीं है। मैं सिर्फ वही बोलता हूँ जो उन लोगों ने बोला था जिसको हम भूल गए थे। इसीलिए हर पग पग पर वो शास्त्रों का वो उदाहरण देते हैं। और ये जो पांच परीक्षण है, ये भी हमारे जो दर्शन शास्त्र है उनके नियमों के अनुसार, जैसे पिछले बार हमने दो दो वे ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा की थी। पहली थी कि ईश्वर का जो गुण धर्म स्वभाव है, जो कर्म है, उसको जो कुछ हम मानते हैं वो उसके गुण धर्म स्वभाव को कन्फर्म करता हो, उसी के अनुसार होता हो, तो वो सच है। अगर ईश्वर के गुण धर्म स्वभाव के विपरीत है, तो जो कुछ जिसको भी हम ईश्वर मानते हैं, वा भगवान मानते हैं, वा जिस भी रूप में देखना चाहते हैं, वो गलत है। तो ईश्वर का गुण धर्म स्वभाव क्या है? दुनिया में हर व्यक्ति, वो किसी भी आस्था में जुड़ा हुआ हो, किसी भी फेथ पर जुड़ा हुआ हो, ये मानता है कि ईश्वर समस्त संसार का सृष्टि करता है। जो जिसका कोई अपना रिलीजियन नहीं, नास्तिक है, वो तो ईश्वर को मानता नहीं है। पर दुनिया में जितने भी 10-15 तरह के रिलीजियन हैं, वो सभी ये जरूर मानते हैं कि ईश्वर समस्त संसार का सृष्टि करता है। सूरज को भी उसने बनाया, सूरज जैसे अरबों 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 तारों को उसने बनाया, ये हवा पानी पत्थर सब उन्हीं का बनाया हुआ है। ये जो सिस्टम जिसको हम वेद में रीतम बोलते हैं, ये जो यूनिवर्सियल सिस्टम है कि हर चीज अपने एक मर्यादा में, अपने एक रूल या लिमिटेशन के अंदर चलता है। सूरज की अपनी गति है, धरती की अपनी गति है, इंसान का अपना स्वभाव है, शेर का अपना स्वभाव है, पेड़ पौधे अपने तरह, ये जो हर एक की अपनी एक मर्यादा है, वो मर्यादा को बनाने वाला वो ईश्वर है। वो ईश्वर जो समस्त संसार का स्वामी है, जो पालन करता है, संहार करता है, बनाता है। तो जो कुछ जब भी हम ईश्वर की, भगवान की बात करें, अगर ये गुण कर्म स्वभाव के खिलाफ जाता हो, तो वो झूठ है, वो माइथोलॉजी है, वो आर्टिफिशियलिटी है, वो अनरियल है। इसी तरह दूसरी बात है, वो भी हमने पिछले बार चर्चा की थी, नेक्स्ट स्लाइड, कि जो कुछ प्रकृति के खिलाफ है, जो प्रकृति का एक जो नियम है, उस प्रकृति के खिलाफ भी जो कुछ है वो भी झूठ है। आग गर्म होता है, अगर कहीं कोई आपको कहे कि ठंडा आग है, तो वो झूठ इसीलिए है कि प्रकृति में कभी ठंडा आग नहीं होता है, आग हमेशा गर्म होता है। कभी सूरज ठंडा, जब सूरज ठंडा कभी हो भी जाए, तो हम और आप रहेंगे नहीं उस सूरज को देखने जानने के लिए, क्योंकि तब धरती बर्बाद हो चुकी होगी। तो सूर्य है मतलब वो गर्म ही होता है, ठंडा सूर्य कहीं होता नहीं, ये प्रकृति के खिलाफ है। कोई अगर दावा करे तो वो झूठ है, कोई माने तो भी झूठ है। जैसे उदाहरण के लिए कोई कहे, पिछले बार हमने चर्चा की थी, कि
कि अमुक व्यक्ति बिना माँ बाप का है, मतलब वो बिना माँ बाप के संबंध से वो जन्म हुआ, ये असंभव वह है, क्योंकि संसार में कोई भी प्राणी पैदा होता है उसकी माँ बाप उसके सामने है या नहीं है, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व है या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है, वो टेस्ट ट्यूब के तरह पैदा हुआ या क्लोनिंग के तरह पैदा हुआ, पर माँ बाप के बिना कोई प्राणी पैदा हो नहीं सकता, ये सत्य है, ये सृष्टि का, ये प्रकृति का नियम है। अगर कोई नहीं मानता या कोई ऐसा नहीं, या कोई मानता है कि बिना माँ बाप के संतान होता है या कोई बोलता है, वो झूठ है। इसी तरह संसार में जो कुछ भी है उसको परखने के लिए पहला नियम है कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के खिलाफ हो या सृष्टि का जो नियम है उसके खिलाफ हो तो भी वो गलत है। दूसरी परीक्षा की चीज है, तीसरी परीक्षा की चीज है, अगली स्लाइड, वट एवर इज इन कॉन्सेंस कॉन्सोनेंस विद द रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ द ट्रस्टवर्थी राइटियस लर्नर ट्रूथफुल एंड फ्री फ्रॉम डिसेट एंड फ्रॉड इज एक्सेप्टेबल एंड द कंट्ररी इज अनएक्सेप्टेबल। अगर हमें ज्यादा ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव पता नहीं, हमें प्रकृति को ठीक से परखना नहीं आता, तो तीसरी परीक्षा है कि जो आप्त पुरुष हैं, आप्त का मतलब होता है जो रिलायबल हैं, जो ट्रस्टवर्थी हैं, जिन पर भरोसा किया जा सके। भरोसा किस पर किया जा सके उसकी अपनी लिस्ट है कि जो धार्मिक हो, जो विद्वान हो, जो सत्य पर टिका रहता हो, जो किसी भी तरह के छल कपट धूर्तता से दूर रहता हो, जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता हो, ऐसा व्यक्ति को आप ट्रस्टवर्थी रिलायबल मानना चाहिए। उस व्यक्ति का जैसा चरित्र हो, जैसा व्यवहार हो, उसको फॉलो करने की, उसके अकॉर्डिंग हम अपने जीवन जी सकते हैं। जब भी हमारे लाइफ में कोई द्वंद्व हो, कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो कि मैं कैसे जीऊं, कैसे करूं, तो जो तीसरा विकल्प परीक्षा का सूत्र है कि हमारे समाज में जो इस तरह के आप्त लोग हैं, आप्त लोग अर्थात जिनका चरित्र बड़ा निर्मल है, जिनका स्वभाव बहुत शुद्ध है, जो सारा संसार को अपना समझते हैं, जो ज्ञानी है, विद्वान, इस तरह के लोगों को अनुकरण करना भी तृतीय परीक्षा है। ये जो तीसरी परीक्षा है, बहुत सारे लोग इसी तीसरी परीक्षा में भी फंस जाते हैं। अब आजकल घर घर में क्या, अब कॉलोनी कॉलोनी में या श्रीलंका से लेकर अमेरिका तक हर जगह बड़े सारे आप्तव वचन लोग आ जाते हैं, गुरु लोग। अब हांक बूंद के हम उन पर भरोसा करते हैं। आप उनको समझाओ, उन शिष्यों को, कि आपके गुरुदेव ऐसा है, आप नहीं जानते, वो तो बिल्कुल डूबे हुए हैं, समुन्द्र के डूबे हुए, आकाश को छुए हुए हैं। कभी कभी हम अपने स्वार्थ के कारण या नासमझी के कारण हम हर किसी व्यक्ति को जो थोड़ा मीठा बोला, जो थोड़ा ट्रिकी बातचीत करने लगा, ट्रिकी वे में बिहेव करने लगा, उसको भी हम बड़ा महान और पवित्र समझने लगते हैं। तो ये बड़ी जरूरी है कि उसके आचरण को, उसके स्वभाव को परखने की जरूरत है। अगर कहीं कोई आपको कहे कि हमारे गुरुदेव जो करते हैं उसको मत फॉलो करो, जो बोलते हैं सिर्फ उसी को फॉलो करो, क्योंकि तुम गुरु के बराबर नहीं हो सकते हो, हमारे बाबा जी के बराबर नहीं हो सकते हो, वो बड़े पहुंचे हुए हैं, वो जो कुछ करते हैं वो लीला करते हैं, तुम्हारे वो असामर्थ्य नहीं है, तुम्हारे वो काबिलियत नहीं उस लेवल तक जाने के लिए, इसीलिए डोंट एस्क अबाउट दिस, उसके बारे में सवाल मत उठाओ, जो गुरु जी बोलते हैं वही करे। समझ लेना कि उस दरवाजे से कभी जिंदगी में जाना नहीं, वो एक नंबर का फ्रॉड है। पर हम सब ऐसी तरह के गुरुओं के चक्कर में फंसे रहते हैं, जो कहते हैं गुरु जो करता है लीला है, और आप जो गुरु जो बताते हैं वो करो। संसार को छोड़ना आपका काम है, संसार को पकड़ना गुरु का काम है, क्योंकि गुरु लीला करता है। अगर आपको ऐसा वचन कहीं मिलता है तो आप यकीन मानिए वो फ्रॉड है, वो कोई आपता नहीं है। अगर आप ऐसा किसी को समझाने की कोशिश करते कि आपका गुरु, आपका भगवान, आपका स्वामी इस तरह का है, तो आप मानिए तो आप भी फ्रॉड है। तो आप्त लोगों का वचन, आप्त लोगों का जो चरित्र है, आप्त मतलब जो रिलेबल हैं, जो प्रमाण पुरुष हैं, उनके वचनों को स्वीकार करना जरूरी है अपने आचरण को बदलने के लिए। पर अपने दिमाग का यूज करना बड़ा जरूरी है जब आप लोगों को पहचानने की कोशिश करते हैं। चौथी जो परीक्षा है, जो कुछ हम करते हैं वो सही है कि गलत है, वो है इंडिविजुअल कॉन्शियंस। जो करने पर मेरे दिल को अच्छा लगता है, जिसको करने पर मेरे अंदर आत्मा को दुख होता है, मैं अंदर से दुखी होता हूं, इसका मतलब मैं गलत कर रहा हूं। जिसको करने पर मेरे अंदर से मुझे सुकून मिलता है, मुझे बड़ी शांति मिलती है, मेरी नींद बड़ी अच्छी होती है, मुझे बड़ा हल्का महसूस होता है, तो मैं जो कुछ कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं। हो सकता है मेरा दिमाग उसको एक्सेप्ट ना करे, हो सकता है मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट ना करे, उसको एक्सेप्ट ना करे, हो सकता है समाज उसको एक्सेप्ट ना करे, पर वो सच है, वो सही है। जो चौथी परीक्षा हमारे शास्त्रकारों ने हमें बताया कि जब भी आपको द्वंद हो, जब भी आपको क्वेश्चन हो, जब भी आपको डिलेमा हो, जबकि आपको कोई डाउट हो, तो आप चौथी द वे ऑफ एग्जामिनेशन है, आप अपने अंदर से पूछो और आपको कैसा महसूस होता है उसके करने पर। किसी रास्ते में आप कहीं घूमने गए, जा रहे थे, किसी गरीब आदमी को, दुखी आदमी को देख करके आपके मन में दया आया, आपने उसको हेल्प किया, उसकी दुकान बसने में मदद की, जो भी है, आप अपने अपने जो जितना आप कर सकते हैं उसे आगे जाकर हेल्प करने की आपकी इच्छा हुई, आप करने लगे, और आपके परिवार वाले आपको रोकते हैं, आपको आपको बहुत सारे बहाना बनाते हैं कि आपकी ये बच्चों की जिंदगी, आपका बच्चों की क्या होगा, पैसा उधर उड़ा देते हो, घर वालों का क्या होगा, तो आप द्वंद्व में फंस जाते हो कि मैं क्या करूं, मेरे इधर जिम्मेदारी है कि मैं वो करूं। पर जिसको करने पर आपको दिल में तसल्ली मिलती है, शांति मिलती है, जान लीजिए कि वो आपके अंदर की आवाज है, वो आपको कहता है जो आप कर रहे थे, जो करना सोच रहे थे वो अच्छा है। किसी के दबाव में आप अपने आप को दबा सकते हो, पर वो आपका अच्छा अच्छा भाव था, वो अलग बात है कि दिमाग के डिसीजन, दिमाग पर प्रेशर डालने पर अपने परिवार वाले, अपने आस पड़ोस के, अपने समाज के कारण हम कभी कभी डिसीजन ज्यादातर बदलते हैं, अपने अंदर की आवाज नहीं सुनते। तो चौथी परीक्षा है कि हम अपने अंदर की आवाज को सुने, और जो अपने अंदर को जो अपने अपने जो सुख मिले या दुख मिले उससे निर्णय करे कि मैं जो कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं कि सच कर रहा हूं। दूसरे स्वामी जी इसी चीज को थोड़ा और एलाबोरेट करते हैं कि अगर किसी चीज को करने में, सुनने में, पाने में तुम्हें खुशी होती है, तो दूसरों के मन में भी वही भाव चल रहा होता है। जब तुम्हें लगता है कि मुझे कोई प्रशंसा करे अच्छा लगता है, कोई गाली दे या निंदा करे बुरा लगता है, तो दूसरों के भी वही अच्छा लगता है, वही बुरा लगता है। मुझे कोई ठगे तो मुझे बुरा लगता है, दूसरों को ठगने पर भी बुरा लगेगा। मेरे साथ कोई खराब व्यवहार करे तो मुझे बुरा लगता है, तो दूसरों के साथ खराब व्यवहार करने भी बुरा लगता है। तो जैसा मुझे अनुभव होता है, मैं ऐसा जानूं कि दूसरों को भी वैसा ही अनुभव होता है, जब ये भाव हमारे अंदर आएगा तो नेचुरली बहुत सारे हमारे जो 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 शंकाएं हैं, जो डाउट्स हैं, वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे कि मैं सामने वाले के साथ कैसे बिहेवियर, कैसे व्यवहार करूं। मैं सामने वाले को देखें, मुस्कुराऊं या ना मुस्कुराऊं, या मुंह लटकाऊं या सुखी रहूं या दुखी रहूं, अगर हम ये खुद को हम पूछें, अगर कोई सामने वाला हमें देखकर मुस्कुराता है, मेरे दिल में अगर गुदगुदी होती है, खुशी होती है, तो यकीन मानिए कि आप मुस्कुराएंगे तो सामने वाले को जरूर अच्छा लगेगा, वो अनजान हो कि जान पहचान। इसमें डाउट करने की जरूरत नहीं, अगर आपका दिल मानता है कि नहीं मुझे ये अच्छा लगता है तो सामने वाले को जरूर ये अच्छा लगेगा। ये चौथी परीक्षा है अच्छा या बुरा या सच या झूठ को परखने के लिए। और पांचवी परीक्षा है, अगली स्लाइड, ये परीक्षा थोड़ा उसके लिए जब आप कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कि जो जो कुछ हम जानते हैं, जिसको हम सच समझते हैं या झूठ समझते हैं, वो सचमुच सच है या झूठ है, इसको परखने के लिए हमारे शास्त्रकारों ने 8 तरह के सोर्स बताए कि ये 8 तरह के ज्ञान के सोर्स से, सोर्सेस ऑफ नॉलेज है। इनमें से तुम्हारे पास जो ज्ञान है उनमें से कौन से सोर्स के द्वारा आया, उससे तुम निश्चित करोगे कि तुम्हारा ज्ञान सच्चा है या झूठा है। जिस चीज के बारे में तुम जानते हो वो सही है या गलत है। पहला है प्रत्यक्ष, जिसकी चर्चा हम करेंगे, जिसको कहते हैं डायरेक्ट परसेप्शन, अनुमान इन्फरेंस, उपमान एनालॉजी, शब्द वर्बल टेस्टिमोनी, अर्थापत्ति पोस्टुलेशन, ऐतिह हिस्ट्री, संभव प्रोबेबिलिटी एंड अभाव नेगेशन। एक एक करके इसकी चर्चा हम करेंगे। ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कुछ लोगों को ये कठिन लगे, पर हमेशा मीठी चीजें भी अच्छी नहीं लगती, कभी कभी थोड़ी कड़वा व कुछ खट्टा मीठा भी खाना चाहिए, तो वो मिक्स होना चाहिए। पहला है कि जो जो आठ तरह के सोर्स ऑफ नॉलेजेस है, उसमें से पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट परसेप्शन है। इसको जो जो मैं ये जितने सारे प्रमाण के बारे में, सोर्स ऑफ नॉलेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो सारे कोटेशन स्वामी जी ने न्याय दर्शन से लिया है। जो हमारे छह वैदिक फिलोसफी है, उनमें से एक न्याय फिलोसफी है, फिलोसफी ऑफ न्याय। उसकी जो मूल रचयिता है उनका नाम है गौतम। वो गौतम बुद्ध नहीं, वो अलग है, गौतम ऋषि। तो ये उन्हीं से ये कोट है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। इसकी जो मीनिंग है अगली स्लाइड में, जो भी हमारे जानने की इंद्रियां हैं, कितने हैं हमारे जानने की इंद्रियां? पांच है, आंख, कान, नाक, जीभ और ये जो स्किन है, त्वचा है। बस आपके शरीर में ये पांच ही चीजें जिनसे आप दुनिया को जानते हैं या समझते हैं, और कोई छठा चीज नहीं है। आप जो कुछ देखते हैं, जो देखने लायक चीजें आंखों से देखते हैं, जो जो शब्द है सुनने लायक चीजें वो कान से सुनते हैं, जो सूंघने लायक स्मेल, जितने भी स्मेल से रिलेटेड चीजें आप नाक से जानते हैं, जितनी टेस्ट से जाना जा सकता है वो जीभ से जानते हैं, और जो जो ठंडा गर्मी हवा पानी जो जो संबंध है वो त्वचा से, जो स्किन से जानते हैं। आप आंखों से जो खाना जो स्वाद है वो आंखों से नहीं जान सकते। खाना कितना भी टेस्टी बना हो, अगर आपका आपको आपका जीभ खराब है, आपको बुखार है व किसी कारण जीभ में खराब है, आपको टेस्ट पता नहीं चलेगा। आप कितना भी गाना सुंदर हो, अगर आप नाक से सूंघ करके नहीं जान सकते, आपको कान ठीक करना जरूरी है। तो ये पांच तरह के, इसको हम कहते हैं सेंसेस, कहते हैं सेंसेस ऑफ नॉलेज। ये इंद्रियां, इंद्रिय का मतलब ही होता है साधन, इंस्ट्रूमेंट, जिनके द्वारा हम दुनिया के बारे में पता लगाते हैं। और उस ये इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है उसी को हम परसेप्शन कहते हैं, डायरेक्ट परसेप्शन या प्रत्यक्ष कहते हैं। पर उसका एक प्रोसेस है। कभी कभी आंखों से, क्या ज्यादातर समय आंखों से देखा हुआ चीज झूठ होता है, कान से सुना हुआ चीज भी झूठ होता है, पर जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसको सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। जो डायरेक्ट परसेप्शन है उसको सबसे ज्यादा ऑथोरिटी दी जाती है। पर ज्यादातर दिखे हुए सुने हुए चीज गलत भी होते हैं। उसकी जो प्रोसेस बताया, जब वस्तु के साथ आपके, मान लीजिए आप मुझे देख रहे हैं, मेरे बारे में आप जान रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस अपनानी पड़ती है। आपकी आंखें ठीक हो, आपकी आंखें हो, मैं सामने बैठा हुआ हूं, आपकी आंखें, मेरे आंखें मेरे उस शरीर पर होना जरूरी है। अगर आप मेरे बारे में जानेंगे, आपकी आंख ठीक है, मैं भी यहीं पर बैठा हूं, पर आप अगर आंख नीचे करके बैठेंगे तो मुझे कैसे देखेंगे? तो आपके आंख मेरे ऊपर होना चाहिए। उतने में भी आपको मेरे बारे में ज्ञान नहीं होगा। आपके आंख के साथ आपका मन का कनेक्शन होना चाहिए। मान लीजिए आप मुझे देख रहे हैं, आपकी आंख भी ठीक है, मैं भी दिखाई दे रहा हूं, उसके बावजूद भी आप मुझे देख नहीं पाएंगे अगर आप मन में और कुछ सोच रहे हैं, किसी और दुनिया में खोए हुए हैं। कभी कभी आप जब बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं, या किसी भीड़ में, मेले में आप घूमते हैं, हजारों लोगों से आपका नजर मिलता है, आप पार करके जाते हैं, पर कितने लोगों को, आपको दो मिनट के बाद पूछा जाए, आप कितने लोगों को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पर सबको आपने देखा था तो क्यों नहीं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे? क्योंकि जब आपकी आंख उस व्यक्ति पर था, तब आपका मन आपके आंखों से रिलेटिव नहीं था, आपके मन और कहीं था। खाना कितना भी बढ़िया हो या खराब हो, अगर आपका मूड अच्छा है या खराब है, आप कहीं और खोए हुए हैं, अचानक आपकी लॉटरी लग गई करोड़ों की, या घर में कोई ऐसे अनहोनी दुर्घटना घट गई, या टीवी में कोई ऐसा प्रोग्राम आ रहा है जहां आप बिल्कुल आपका मन पसंद आप डूब गए हो, जैसे बहुत सारे भारतीय जो होते हैं वो क्रिकेट के बड़े फैन होते हैं, और खास करके इंडिया पाकिस्तान मैच हो जाए, ऑस्ट्रेलिया इंडिया मैच हो जाए, ये अपने टेक्सास में ये वो क्या फुटबॉल के बड़े शौकीन होते हैं और पागल जैसे होते हैं, अब डूब जाते हैं। और मान लीजिए आपका आपके जो फेवरेट क्लब वाले मैच कर रहे, फुटबॉल मैच हो रहा है और बिल्कुल आप जीतने हारने की नौबत पर आप घुसे हो और मम्मा कह रहे खाना खाओ, आप खा रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है वो खाना क्या खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, रोटी है क्या है, ब्रेड है, पता ही नहीं चलता है, खाना चला गया, खाने का कुछ स्वाद नहीं पता चला, आपका जी भी ठीक है, खाना भी ठीक है, क्यों आपको खाने का पता नहीं चला? क्योंकि आपका मन खाने पर नहीं और कहीं था। इसीलिए हमेशा ये दावा करना कि नहीं मैंने खाकर देखा है ये बुरा है अच्छा है, ये गलत स्टेटमेंट है। हमेशा ये बोलना है कि नहीं मैंने देखा है ये अमुक है, ये गलत स्टेटमेंट है। जरूरी नहीं है आपने जो देखा वो ठीक देखा, हो सकता है उस समय मन आपका और कहीं हो। जरूरी नहीं कि आपका मन आंखों से मिला हुआ हो, आंख वस्तु से मिला हुआ हो तो भी आपको सही ज्ञान होगा, सामने वस्तु होने पर भी नहीं होगा। अगर आपकी बुद्धि आपकी साथ न दे, अगर दिमाग से हम थोड़े ढीले हैं, हम कभी कभी बहुत सारे फेबिया में ग्रस्त होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जिनको भूत प्रेत पर बड़ा भरोसा है, वो बड़े आसानी से उनको भूत प्रेत दिखता है। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको जिंदगी में वो रात भर जग कर बैठा रहे श्मशान में तो भी उनको भूत नहीं दिखेगा, पर करोड़ों लोग ऐसे हैं कि दिन के दोपहर में उनको भूत दिख जाता है। अब ये क्या है, वह बुद्धि पर डिपेंड करता है कि आपने अपने बुद्धि में क्या, आपका जो इंटेलेक्ट है आपने उसको कैसे कल्टीवेट किया है, कैसा आपने उसको उसको कैसे पाला पोसा है, कैसे नर्चर किया है। अगर आप भूत प्रेत को मानते हो तो आपको जरूर भूत प्रेत दिखेगा, जो नहीं मानता दुनिया की कोई ताकत तो उसके सामने कोई भूत आ ही नहीं सकता। मैं जब दिल्ली में था हमेशा बोलता था क्यों हमें था भूत प्रेत डायन प्रेत जमुना पार्क के साइड में ज्यादा लगते हैं, साउथ दिल्ली में क्यों नहीं आता है? जितना आपके पढ़ने लिखने सोचने का दिमाग बढ़ेगा उतना भूत प्रेत आपको कम दिखेगा। आप भूत प्रेत को बड़े मानने वाले व्यक्ति हैं, शाम अभी हुआ भी नहीं तो भी आपको कोई खूंटा दिख जाए, सूखा पेड़ दिख जाए तो भी आप भूत देख के डरो। जो भूत प्रेत को नहीं मानता, अगर असलियत में भी कोई भूत तो होता नहीं है, मान लीजिए कोई भूत बन के आ भी जाए तो भी कहेगा नहीं ये कोई बदमाश है शरारती कर रहा है। जो मैजिक आप लोग देखते हैं, जो मैजिशियन मैजिक दिखाता है, वो एक तरह के आपके दिमाग को कंफ्यूज करता है अपने ट्रिक से, और यही मैजिक है। पर बेचारा मैजिशियन हमेशा बोलता है कि ये ट्रिक है, ये सच नहीं है, ये कोई ईश्वरीय गुण नहीं है, ये ट्रिक है, और उसके बदले वो पैसा लेता है। और इसी में से दो चार कोई चालू व्यक्ति सीख जाए वो बाबा बन जाता है और भगवान बन जाता है, और हम उनके चरणों में गिड़गिड़ाते हैं, देखो भूत निकाल दिया, अंगूठी निकाल दिया। मतलब हमारी हमारा नेचर ऐसा है कि जो जितना ठगने वाला हो उसे हम इतना बड़ा भगवान मानते हैं। सीधा शरीफ मैजिशियन को हम मैजिशियन मानते हैं, उसी में से दो चार कला सीख गया तो कोई बाबा हो गया और बहुत बड़ा बाबा, अब वो भगवान बन गया। तो प्रत्यक्ष से जो जो सबसे पहला जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो प्रत्यक्ष है, मतलब डायरेक्ट परसेप्शन है। पर उस डायरेक्ट परसेप्शन के लिए जो प्रोसेस है कि वस्तु वस्तु के साथ आपका इंद्रिय जुड़ा हुआ हो, इंद्रिय के साथ मन जुड़ा हो, मन के साथ आपकी बुद्धि ठीक हो, और नेचुरली आत्मा होना जरूरी है, डेड बॉडी के साथ कोई कोई ज्ञान नहीं होता है। तो हमें जो ज्ञान होता है उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और आम जीवन में ज्यादातर हम जो जो देख जो ज्ञान हमें है वो प्रत्यक्ष ज्ञान से होता है। नेक्स्ट टाइम हम चर्चा करेंगे अनुमान प्रमाण। अनुमान का अर्थ होता है जो इन्फ्लुएंस, जो हम कभी किसी कॉज और इफेक्ट के जो परमानेंट रिलेशन है, उस रिलेशन को जानने के बाद जब हम ये पता लगाते हैं, कोई दिखे ना दिखे तो भी हम पता लगा देते हैं कि ये कौन है क्या है, इसे हम अनुमान कहते हैं। जैसे दुनिया के हमारे डेली लाइफ में ज्यादातर काम हम इन्फ्लुएंस के द्वारा करते हैं, तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। बाकी जो सात सोर्स ऑफ नॉलेज है, तो आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आरती करते हैं।